शांति। हिंदी में एक कहावत है, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, छचुंदर के सिर पर नभाए चमेली, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। ये गंगू तेली कौन है? जी राजा भोज था कभी 11वीं शताब्दी विक्रमादित्य के ही वंश में, मालवा के राजा जिनकी ख्याति बहुत थी, संगीत साहित्य सब कुछ सब में निपुण। दक्षिण में दो राजा थे, एक तैलंग और गंगेय। ये दोनों शक्तिशाली राजा थे और उन्होंने सोचा कि राजा भोज को हराया जाए। अपनी बड़ी सेना लेकर वो गए। राजा भोज की छोटी सी टुकड़ी के साथ उन दोनों की लड़ाई हुई और दोनों की हार हुई। उसके बाद ये कहावत बनी, कहां राजा भोज और कहां गंगेय और तैलंग। पर समय अनुसार, काल अनुसार कहावतों में, भाषाओं में विकृति आई और फिर वो बन गया कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। हम क्या थे, कहां वो और कहां ये, हमारी भी कहानी कैसी है। सुबह की साकार मुरली, रचना और रचता, के रहस्य को कोई रिंचक मात्र भी नहीं जानता, किसी को कुछ पता नहीं है कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। संपूर्ण इतिहास जैसे एक अंधकार है, किसी को नहीं पता कब क्या परिवर्तन हो गया। स्वर्ग केवल किताबों में रह गया। स्वर्ग क्या है, क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। इतिहास पर ढेर सारी किताबें लिखी गई है, ढेर सारे इतिहासकार संसार में हुए हैं, हर एक ने संशोधन किया है, लिखा है इतिहास। द्वापर से संस्कृति का वैदिक काल क्या था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, हड़प्पा क्या हुआ, वैदिक पीरियड, प्री वैदिक टाइम्स, पोस्ट वैदिक टाइम्स, सिंधु घाटी सभ्यता कब हुई, बहुत कुछ लिखा गया है, पर कब क्या हुआ वास्तव में किसी को भी नहीं पता। एक बहुत बहुत बड़ा इतिहासकार था एडमंड बर्क, उसने अपने जीवन के 30 साल लगा दिए इतिहास लिखने में, और उसने सोचा मुझे संपूर्ण मानव जाति का इतिहास लिखना है, केवल किसी एक देश का इतिहास नहीं, संपूर्ण मानव जाति का इतिहास। 1500 पन्ने उसके हो गए लिखकर। बहुत बड़ा विचारक मनीषी, लिखते लिखते वो रात भर जागते रहता था, सोचते रहता था, यहां वहां से चीजें एकत्र करता था, सूचनाएं। पर एडमंड बर्क बहुत होशियार था, और उसका संकल्प था कि इस मानव जाति में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मुझे लिखना है, सब कुछ। 1500 पन्ने हो गए थे, एक रात बैठकर लिख रहा था तो अचानक उसे आवाज आई, उसके घर के पीछे कुछ हुआ है। उसने देखा पड़ोसी भागे भागे जा रहे, उसने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। वो घर के पीछे गया, देखा वहां एक हत्या हुई है, मर्डर, लाश पड़ी हुई है, खून बहा जा रहा है, कपड़े रक्त से रंजित है, और हत्यारे को भी पकड़ लिया गया है। वो लोगों से पूछता है किसने हत्या की, एक व्यक्ति कहता है ऐसा हुआ, दूसरा कहता है ऐसा नहीं वैसा हुआ, ये सारे चश्मदीद गवाह है, आई विटनेसेस। तीसरे जो पूछता है वो कोई और ही संस्करण, नया वर्शन बताता है स्टोरी का। जितने लोगों से पूछता है वो सारे वहीं खड़े थे, लाश अभी भी पड़ी हुई है, हत्यारे को पकड़ लिया गया है, और जितने लोग थे अलग अलग बातें बता रहे हैं। वो सोचता है ये घटना अभी हुई है, ये सारे चश्मदीद गवाह है, और मैं लिख रहा हूं इतिहास कब का, 2000 साल पुराने पहले क्या हुआ, ये हत्या अभी हुई है, और फिर भी लोग इतनी अलग 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 बातें बता रहे। वो घर आया और उसने जितना कुछ लिखा था सब कुछ जला दिया। बहुत बुद्धिमान इतिहासकार था, पता ही नहीं कब क्या हुआ, कहां कैसे हुआ। हमारी भी कहानी ऐसी ही है, इतिहास में कब क्या हुआ, क्या परिवर्तन कब आए, हुआ कुछ, हमने माना कुछ। इतिहास में ढेर सारी चीजें हुई है, सभी का वर्णन है, सबका वर्णन लिखा हुआ है, पर वर्णन लिखा कब है, जब व्यक्ति हुआ उसके मरने के कुछ साल बाद। ढेर सारे साधु संत योगी तपस्वी महात्माएं हुए हैं जिनको लोग भगवान के रूप में पूछते हैं, पर वो जब हुए तब शायद कुछ नहीं हुआ होगा, वो जब चले गए उनके भक्तों ने उन्हें मिलकर भगवान का दर्जा दे दिया, वो जब हुए शायद कोई भी चमत्कार ना किए हो, पर जब भी महान आत्मा जाती है तो उसके इर्द गिर्द चमत्कार खड़े हो जाते हैं, मंदिर बनते हैं, भक्ति कल्ट। भक्ति का तुमको पता है आज सुबह की साकार मुरली, ज्ञान का तुमको पता नहीं है, रिंचक भी पता नहीं है। उसी तरह रोग की भी कहानी ऐसी ही है, बीमारी की भी कहानी ऐसी है, कब रोग सृष्टि में आए पता ही नहीं चला। देवी देवता थे, कब द्वापर चालू हुआ, कब त्रेता अंत हुआ, बीच में क्या हलचल हुई और व्यक्ति ने क्या क्या किया कुछ भी पता नहीं है। और फिर अचानक भगवान आता है और कहता है कि तुम देवता थे, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, तुम क्या बन गए और कैसे बन गए और क्यों बन गए तुम्हें ही पता नहीं, मैं तुम्हें इतिहास बताता हूं। बाप आए हैं सृष्टि का क्या हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाने। तो जैसे हर चीज का इतिहास है, और कुछ इतिहास तो भगवान ने बता दिया, कुछ मनुष्यों ने बताया है, आटे में नमक मिसल, सभी बातें जो मनुष्य ने लिखी है, बताई है, कही है, जानी है, समझी है, संपूर्ण सत्य नहीं है, परंतु हाँ कुछ सत्य तो उसमें है। संशोधन व्यक्ति ने किए हैं, और मनुष्य बहुत विचारशील प्राणी है, बुद्धिमान है, उसके पास बुद्धि है, वो चीजों को देखता है, निष्कर्ष निकालता है, समझता है। तो रोगों की इस कहानी में, जिससे हमारा शरीर रोगी हो गया, मन रोगी हो गया, चित्त विक्षिप्त हो गया, हमने बहुत सारी चीजें अब तक जोड़ी है। किसी ने कहा ईश्वर का प्रकोप है इसलिए बीमार पड़ गए, किसी ने कहा ईश्वर की नाराजगी है, किसी ने कहा शाप मिल गया है तुमको, किसी ने कहा तुम्हारा कर्मों का हिसाब है, हिसाब किताब। ये ब्राह्मणों का सबसे फेमस मोस्ट सेलिब्रेटेड टूल है जिसका वो प्रयोग करते हैं जब बीमार पड़ते हैं। तो क्या है ये? हिसाब किताब है, हिसाब किताब चुक्त हो रहा है। मुरलियों से हमने वो सारी चीजें उठा ली है जो हमारे काम की है। कल एक मरीज आए थे अपने पिताजी को लेके, तो दो तीन प्रश्न हमने पूछे, वो बोले ये हमारे डैडी जो है ना, ये जो मतलब की बात सुनते हैं बस, मतलब की बात अगर कोई दूर से भी कह रहा है ना वो उनको सुनाई देती है, बाकी उनको जो उनके मतलब की बात नहीं, जो उनके कान में भी कहो तो भी ना सुने जैसा करते, सिलेक्टिव हियरिंग लॉस है, जो काम का है बस उतना ही सुनते हैं, बाकी उनको सुनाई नहीं देता है। तो हमने भी क्या किया है, बड़ी चतुराई से, चालाकी से, कौन कौन से शब्द उठाए हैं, ड्रामा, कौन कौन से शब्द उठाए, हिसाब किताब, कार्मिक अकाउंट्स, ये क्या है हमारा, कर्मों का अकाउंट है, क्या कर रहे हो, कहाँ बिजी थे, सेवा में बिजी थे, बाबा की सेवा, ये सब शब्द हमने उठाए और हम इनका प्रयोग करते हैं अपने को बचाने के लिए। शरीर साथ नहीं दे रहा है, वजन इतना क्यों बढ़ गया, पेट सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है, पेट सपोर्ट नहीं करता, टेस्ट सपोर्ट नहीं करती, इसीलिए। किसी मुरली में बाबा ने कहा था ड्रामा शब्द का प्रयोग कौन कर सकता है, सबके सबको अधिकार नहीं है इस शब्द का प्रयोग करने के लिए। इस पर भी मुरली है कोई एक, इसको ढाल की तरह यूज करते हैं स्वरक्षा के लिए। तो ऐसी ढेर सारी बातें हुई है जिससे हम रोगी हुए हैं और इनको हम प्रयोग करते हैं। और क्या है कारण जो बताते हैं, युक्ति से नहीं, रोग के कारण क्या बताते हैं, मनुष्य, गोलियां है खा लो, मौसम, मौसम को दोषी ठहराते, मौसम बदला ना इसलिए ये हो गया, कल पहले भी हुआ था अभी भी हो रहा है, और बाबा की मदद का अनुभव होता है इसमें, और क्या। बाबा कहते संगम युग किस लिए, बाप किसने, ये संगम युग के सुहेज है, बाबा ने तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार किया है, खाओ पियो और मौज करो। कुमार जीवन है किस लिए, इसी के लिए तो है, बीमारी मतलब आराम का समय, बाप को याद करो उस समय, और क्या कहते हैं हम बीमारी के लिए। बीमार होने के बाद हमने बहुत चीजों से बीमारी को जोड़ा है, गलत आहार से जोड़ा हुआ है, ये खाया तो वो हो गया, इसलिए ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमारा शरीर साथ नहीं देता है, शरीर कमजोर है, बचपन से ही कमजोर है, आज का नहीं है, बचपन से ही ऐसा ही है। ये भी एक अच्छा कारण है, उम्र हो गई है, हम फलानी जगह से आए, हमारे वहाँ वो भोजन था, यहाँ वो नहीं मिलता ना, इसीलिए हम जहाँ थे वहाँ वो पानी था, ऐसी तासीर ये आबोहवा यहाँ की हमें सूट नहीं होती, माउंट का पानी हमको सूट नहीं होता, यहाँ का पानी बहुत भारी है, हमारे उधर वैसा नहीं था और टेंशन बहुत है, टेंशन से जुड़ा काम बहुत है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सेवा ज़्यादा है, टाइम ही नहीं मिलता, कब करें ये सब चीज़ें, पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं है। हमने ढेर सारी चीज़ें रोगों से जोड़ी है एक चीज़ को छोड़ के, जिसकी हम अभी कुछ दिनों तक चर्चा करेंगे, और ये बड़ी विस्फोटक चीज़ है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। इस सीरीज़ का नाम है कहाँ बगीचों का मालिक और कहाँ खेती का गुलाम। ये गुलामी की दास्ता कब से चालू हुई, ये गुलामी कब से चालू हुई, ये रोग कब प्रवेश कर गए हमारे जीवन में हमें पता ही नहीं चला, और इन रोगों ने हमें इतना भारी कर दिया है कि हमारा लक्ष्य एंजल ऑफ लाइट बनना, फरिश्ता बनना, चमकीली स्वर्ण काया यहीं पर अनुभव कर लेना, योग में स्थिति ऊंची ऊंची हो जाए, पर वो योग की स्थिति ऊंची न होकर हमें क्या मिलता है, निद्रा, आलस, प्रमाद, नशा, थकान, अनिद्रा, बहानेबाजी, अलबेलापन, ये सब से हम घिरे हुए हैं, और इन हर एक के उत्तर में हमारे पास, प्रश्न के लिए हमारे पास एक बहुत सा अच्छा उत्तर रेडीमेड तैयार है, अगर किसी ने पूछ लिया ना तो तुरंत तैयार है। कोई कहे कि तुमको आज योग में नींद आ रही थी, उत्तर हमारे पास पहले से है, एक रेडी रखा है स्पेशल उत्तर, जैसे कि रात में नींद नहीं हुई पूरी, मच्छर थे, गर्मी थी, लाइट चली गई थी, बाजू वाला खराटे ले रहा था, लेट हो गए थे, और रात में दो तीन बार उठना पड़ा, बुखार जैसा लग रहा था, अभी है नहीं, अभी नहीं, रात में लग रहा था, गरम गरम लग रहा था, रात को आता है बस नहीं बुखार आता है, पर मतलब वो थर्मामीटर में नहीं आता है हमारा बुखार, जब भी वहां देखते हैं ना उसमें तो नॉर्मल दिखाते हैं, पर बुखार रहता है उसमें नहीं आता है, रिपोर्ट्स किए कुछ, सारे रिपोर्ट्स है सब नॉर्मल है, रिपोर्ट्स तो ठीक आते पर बुखार रहता है, हड्डियों में बुखार है तो कहीं ना कहीं हमने एक सुरक्षा कवच निर्माण कर रखा है। तो कहाँ थे हम जब धरती पर उतरे, तो क्या थे, कितने स्वस्थ, कितने निरोगी, कितने अथक, कितने सुंदर, मुरलियों में आते हैं अभी लूले लंगड़े, दुबले पतले काले, तब ऐसा नहीं था, तब कैसे थे, सुंदर थे, कंचन काया थी, अकाले मृत्यु नहीं थी उस राज्य में, ऐसा क्या था वहां पर जो यहां पर चालू हो गया द्वापर से। तो हमने ढेर सारी चीजों के साथ रोग को जोड़ा है एक चीज छोड़कर। मेडिकल साइंस ने जर्म थियरी निकाली, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, ये सब निकाला कि इनके वजह से होता है, फिर एनवायरमेंटल निकाला, पोल्यूशन निकाला, पोल्यूशन की वजह से होता है, ढेर सारे कारण है, कुछ अननोन, कुछ ऑटो इम्यून, इटियोलॉजी हम जिसको कहते हैं मेडिकल फील्ड में, पैथोजेनेसिस, हर बीमारी होती है उसको डिवाइड कैसे किया जाता है मेडिकल में, इंट्रोडक्शन, वो बीमारी क्या है, इटियोलॉजी उसका कारण क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्यों हुआ वो, इन्वेस्टिगेशंस, क्लिनिकल फीचर्स क्या है उस बीमारी के, जैसे मलेरिया, डेंगू, उसमें क्या क्या होता है मरीज को, साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं, साइंस हमको इलिसिट करने पड़ते जो डॉक्टर करता है, सिम्टम क्या है बीमारी के, साइंस क्या है बीमारी के, इन्वेस्टिगेशंस करते, ढेर सारी जांचें, एंजियोग्राफी से लेके ब्लड टेस्ट से लेके सब कुछ, फिर उसके बाद में मैनेजमेंट, एक इंसिडेंस और प्रिवेलेंस भी होता है, समाज में कितना इंसिडेंस है, कितना प्रिवेलेंट है ये डिसीज़, और फिर प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, फिर वैक्सीनेशन होता है, मैनेजमेंट, फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके लिए, पॉलिसीज होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, इस तरह से किसी भी बीमारी का वर्णन मेडिकल फील्ड में इंट्रोडक्शन से चालू होता है, इटियोलॉजी, वायरस से हुआ, बैक्टीरिया से हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, वर्तमान स्थिति क्या है उस बीमारी की, नए कौन कौन सी ड्रग्स आ रहे हैं उसको, उस पर जीत पाने के लिए। ये एलोपैथी, आयुर्वेद, वात पित्त कफ, होम्योपैथी, कितने सारे, इतनी सारे विधियां हैं। पैथीज है संसार में की बात मत पूछो। किसी भी व्यक्ति के पास जाओ और अपनी बीमारी का दुखड़ा यदि सुनाओ तो वो एक नुस्खा तो जरूर देगा कि तुम जो है ना ये गलत कर रहे हो, ये पीना बंद करो, अब ये चालू करो। वो एक चीज तो जरूर बताएगा ही बताएगा, क्योंकि इसमें अहंकार को बड़ा रस मिलता है दूसरों को सलाह देना। हाँ, ये पिया करो, वो पिया करो, वैसा पिया करो, ऐसा किया करो। हमें हर एक चीज से जोड़ा है। ज्यादा तेल खाते हो ना इसलिए बीमार पड़ते हो, ज्यादा ये खाते हो ना इसलिए ये होता है, नमक कम कर दो, शक्कर कम कर दो, फिर थोड़ा सा नेचुरल फल खाया करो, फ्रूट खाया करो, ये सब चीज़ों से हमने जोड़ा है, सब से जोड़ा है, नमक से जोड़ा है, मसालों से जोड़ा है, ये प्रोसेस्ड फूड है इससे जोड़ा हुआ है, ये ज़्यादा मशीन से गुजारा हुआ है इससे जोड़ा हुआ है, हर चीज़ से जोड़ा हुआ है एक चीज़ को छोड़कर। वो क्या है? नहीं, बीमारी का कारण किस चीज की वजह से बीमारी होती है, हर चीज से जोड़ा है बीमारी को। और भी कुछ है इसके वजह से? अगर इसको हटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो बीमारी अपने आप कम होगी। उस पर रिसर्च चालू है। कौन सा एक मुख्य कारण रहा है? अनाज, सीरियल्स, ग्रेन्स। अनाज मानव सभ्यता को रोगों के नरक में घसीटने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। हमें आंख मूंद कर सिखाया, हम आंख मूंद कर सदियों से इस गैर मानव आहार को पैदा करते जा रहे, खाते जा रहे, कभी पलट कर रुक कर विचार तक नहीं कर पाए कि वास्तविक ये मानव खाद्य है भी नहीं। मानव सभ्यता को जीवित रखने में अनाज ने जो प्रशंसनीय योगदान दिया है, वही दूसरी ओर बहुत सारी बीमारियां भी उपहार में दी है। अनाज अर्थात क्या क्या? मेन तो तीन है, तो गेहूं, दूसरा चावल और तीसरा दालें। ये तीन दालें, ढेर सारी दालें, चावल हर प्रकार का, और गेहूं के साथ और भी दूसरे दूसरे भी है, मक्का, ज्वार और बाजरा, ये सारी चीजें। ये रोटी, मतलब जब तक रोटी का टुकड़ा अंदर नहीं जाता, कितने भी फल खा लो, कितना भी सलाद खा लो, पेट भरता नहीं। रोटी तो चाहिए ही चाहिए, आधी रोटी मिल जाए बहुत है, नहीं बहुत तो नहीं है, पर मिल जाए तो तब तक तृप्ति नहीं होती, संतुष्टता नहीं होती, मन में शांति नहीं होती है, एकदम तन बदन में खुशी का अनुभव होता है, गरम गरम उस पे मिल जाए रोटी। रोटी के प्रकार एक होता है रोटला, एक होता है खाकरा, एक होता है थेपला, एक होता है पराठा, एक होता है तंदूरी, पूरी, कितने सारे प्रकार है उसके, कहीं ना कहीं। हाँ, बाबा जो बातें करते हैं वो अलौकिक बातें हैं, शब्द जो है उसके पीछे भावार्थ कुछ और भी होता है। तुमको मिनिमम दिया जाएगा जो तुम्हारे शरीर के लिए जरूरी है, वो उसका भावार्थ है। दूध घी की नदियां, दूध की नदियां थोड़ी होती है, वो कहावत है। ये सब जो है इसका, जो हम कह रहे हैं यहाँ पर, उसको कुछ भी मानना नहीं, खुद रिसर्च करो, खुद इन्वेस्टिगेट करो। यहाँ ढेर सारी बातें बताई जाएगी, कही जाएगी, ये डिस्कशन चाहे तो एक महीना भी चल सकता है केवल एक ही टॉपिक पर, अनाज। वो निष्कर्ष पर आप खुद पहुंचो कि रोटी सच्ची है या खोटी, रोटी है खोटी और आटे में है घाटा। जीवन में अनाज को अपनाने के बाद मानव उत्तम स्वास्थ्य का धनी नहीं बन सका, रोग उसका स्थायी साथी बन गया। अनाज से रोगों का संबंध हमने कभी जोड़ा ही नहीं, सब चीजों से जोड़ा, सभी चीजों से। अचानक एक दिन कैंसर, क्यों कैंसर हो गया? ना तो बाहर का कुछ खाते हैं, ना तो गुटखा तंबाकू बीड़ी कुछ भी नहीं, ना दारू, तीन टाइम बाबा के घर में है, याद में बाबा के खाते, और एक दिन अचानक ये कहां से आ गया? रोग को प्रकृति का अभिशाप, ईश्वर की नाराजगी, भाग्य का चक्कर या प्रेत भूत की बाधा, किसी ने कुछ किया है? मेरे पास तीन बार एक तांत्रिक मुझ पर प्रयोग कर रहा है। कल एक आत्मा ऐसे बता रही थी पर बाबा ने मुझे बचा दिया हम उसके विभिन्न लाक्षणिक उपचारों की खोज में जुट गए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ना सिर्फ वेदों ने बल्कि हमारी सारी पौराणिक गाथाओं में, यहां तक कि आयुर्वेद में भी एक झूठा अंधविश्वास हम तक पहुंचा दिया गया है कि जन्म मृत्यु और बुढ़ापे की तरह रोगी होना भी सुनिश्चित है। ये हमें बिलीफ सिस्टम है कि रोगी तो होना ही पड़ेगा, बूढ़ा तुमको होना ही पड़ेगा, कर शरीर कमजोर, ये तो प्रकृति का नियम है। देवता बूढ़े होते थे क्या? देवता रोगी होते थे क्या? देवता कभी, देवताओं को लगता था कमजोरी लग रही है, सुस्ती लगती है, पता नहीं, हमेशा एक थकान सी रहती है शरीर में। कोई दूसरा देवता है, क्या हुआ भाई तुम क्यों बैठे हो, चलो खेलते हैं चित्रकला। नहीं नहीं आज मूड नहीं है। देवता कभी ऐसा कहेगा? कोई कहाँ है नारायण जी? रेस्ट पे है, हॉस्पिटल गया दिखाने के लिए, आज राज्यसभा निलंबित, रद्द। हम पुरानी मान्यताओं धारणाओं के इतने गुलाम हो चुके हैं कि ऋषि मुनि शब्द सुनते ही भाव विभोर हो उठते और मानकर चल पड़ते हैं कि बस इसको जो कुछ भी इनका जो कुछ भी होगा सिर्फ सत्य ही होगा। इसलिए वेदों और पुरानी गाथाओं की अंधी मान्यताओं को हम संदेह की दृष्टि से देखने का कभी कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। हमारे सारे वेद शास्त्रों में सैकड़ों गलत कहानियां भरी हुई है, परंतु हम अधार्मिक होने के भय से चू तक नहीं करते। जो कुछ लिखा है उसमें वो राइट है, बस मानते जाओ मानते। इसलिए तो भगवान आज की मुरली, रचना और रचता को रिंचक मात्र भी तुम नहीं जानते, कोई नहीं जानते, मैं बताता हूं क्या है। सब रिजेक्ट कर दिया, वेदों में जो कुछ लिखा है, पुराणों में जो कुछ लिखा है, सारी कहानियां क्या है? दंत कहानियां है। उसी तरह ढेर सारे शास्त्र बने हैं रोगों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, इलाज के ऊपर, पर व्यक्ति तो बीमार होता ही गया। 100 साल पहले जितनी बीमारियां नहीं थी उतनी अब है। स्वास्थ्य प्रकृति का नियम है और व्याधि मानव का प्रयत्न। कमाई है तुमने ये बीमारी, अपने पुरुषार्थ से, अथक पुरुषार्थ से बीमारी को कमाया है, खून पसीना बहा बहा के बीमार हुए हो। स्वास्थ्य प्रकृति का प्रयत्न है और व्याधि मानव का प्रयत्न है। पूर्णता प्रकृति की, अपूर्णता मानव की। शरीर का स्वाभाविक गुण स्वास्थ्य है, व्याधि नहीं। प्रकृति के नियमों से हटते ही व्याधि अंकुरित हो उठती है। जन्म मृत्यु से व्याधि का क्या लेन देन? जन्म मृत्यु और बुढ़ापा प्रकृति के अटूट नियम है, परंतु व्याधि अटूट नियम नहीं है। व्याधि कमानी पड़ती है जो अप्राकृतिक है। जन्म मृत्यु बुढ़ापा अप्राकृतिक है, इसके भी ऊपर का स्टेटमेंट है, इवन बुढ़ापा भी प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। मृत्यु भी क्या, क्यों इतनी जल्दी मरते? अकाल मृत्यु, मरना ही नहीं चाहिए देखा जाए तो। फिजिकल इमोर्टेलिटी, शरीर को अमर बना दिया जाए, ऐसा क्या कारण है कि शरीर मर जाता है? क्यों? उसमें विजातीय द्रव्य तत्व प्रवेश करते हैं तब मृत्यु होती है। दांतों का शीघ्र गिरना, दंत रोग, बुढ़ापे का शीघ्र आना, याद नहीं रहता है चीजें कहां रखी थी, कहां क्या, कुछ याद नहीं। वास्कुलर डिमेंशिया, सीटी स्कैन कराओ, एमआरआई कराओ तो ब्रेन सिकुड़ा हुआ, कम उम्र में, 50 साल की उम्र में, कुछ भी याद नहीं है। बालों का सफेद होना, रीढ़ का कड़ा हो जाना, कुबड़ा बन जाना, हड्डियां कठोर हो जाना, धमनियों का कठोर हो जाना, एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लॉकेजेस, यहाँ यहाँ पैर, सारी धमनियां कठोर हो जाना, मोतियाबिंद, गैस, अपच, कब्ज, मधुमेह, बहरापन, आंखों का कमजोर होना, सर्दी एवं कई प्रकार के चर्म रोग हो जाना, इत्यादि रोगों के अनेक रूप इस सदियों में भुगत तैयार है और इन्हें स्वीकार किए बैठे। सबसे मुख्य कारण व्यक्ति बीमारी से छूट नहीं पाता क्या है, वो उसको स्वीकार कर लेता है, ये है। और अब मुझे जीवन भर दवाइयाँ खानी ही पड़ेगी, ये बीमारी मुझे है। वो ये सोचता ही नहीं कि ये क्यों हुई है, कहाँ से हुई है, कारण क्या है। क्योंकि इन सभी रोगों का वर्णन हमारे पुराने ग्रंथों में, वेदों में, शास्त्रों में मिलता है, इसलिए हम दिल को बड़े भोलेपन से बहलाकर संतुष्ट हो जाते कि रोग का तो सदियों से मानव से नाता रहा है, अब हम भी भला रोगी हो गए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात। किसी ना किसी रूप में और कभी ना कभी बड़े रोग में उलझना तो हमारे जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा रोग। छोटी मोटी बीमारियां नहीं होती हमको, बड़ी बड़ी बीमारियां। और छोटे मोटे डॉक्टर के पास हम नहीं जाएंगे, बड़े तब कहीं तृप्ति होती है, स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। जब तक जेब थोड़ी खाली नहीं हो जाती तृप्ति नहीं होती है। हम भी कुछ है, इसलिए तो हम बुढ़ापे की सारी सुरक्षा पहले से ही कर रखते हैं, ये मानकर कि बुढ़ापा भी एक रोग है। इस पर रोग का तो कोई ना कोई लेबल लगेगा ही। लोग ठंडी आहें भरकर बड़ी अदा से कहते हैं, भाई क्या भाई, ये तो शरीर रोग तो आगे पीछे, शरीर के रोग तो आगे पीछे लगे ही रहते हैं। शरीर का दूसरा नाम ही रोग है, बीमारियों का ये घर है, मशीन तो घिसेगी, ये लोगों के तर्क है। जैसे घुटने घिस गए, क्या हो गया भाई, घुटने घिस गए, दर्द होता है, हाँ बुढ़ापा है इसलिए घिस गए, सोच रहा हूँ ऑपरेशन का, घुटने नी रिप्लेसमेंट। परंतु हम क्यों रोगी होते हैं, इसका हमने कभी जवाब नहीं ढूंढा। शीघ्र बुढ़ापे के दुखदायी लक्षण क्यों भोगने पड़ते हैं, कभी इसका जवाब नहीं ढूंढा। पिछले जन्मों का कर्मफल समझकर या समझा कर चुप हो गए। सदियों से हमारे बच्चे लूले, लंगड़े, टेढ़े मेढ़े, गूंगे, बहरे, काने, पागल, दिमागी रोगों से ग्रस्त और विकृत पैदा हो रहे हैं। आज 20वीं सदी में हमारे बच्चों की यह स्थिति है कि पैदा ही होते हैं उन्हें तरह तरह के भयंकर रोग हो जाते हैं, जैसे कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, दमा, गठिया, मिर्गी, क्या क्या रोग गिनवाए। हम बर्बादी के उस कगार पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से पीछे लौटने और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में हमें सदियां लग जाएगी। कम से कम अब हमें जाग कर, चौंक कर पूछना चाहिए, ये सब दुख क्यों, ये सब बीमारियां क्यों, ये रोग क्यों। आओ खोजबीन करें। अनाज एकमात्र कारण कहना बिल्कुल उचित नहीं है, और भी रोगों के बहुत कारण है, परंतु अनाज का सभ्यता को रोगी बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके साथ हमने कभी नहीं जोड़ा, तेल के साथ जोड़ दिया, प्रोसेस फूड के साथ जोड़ दिया, कुक्ड फूड के साथ जोड़ दिया, क्या कहते हैं उसको, फास्ट फूड के साथ जोड़ा रोगों को, मौसम के साथ जोड़ा, सबके साथ जोड़ा, पर कहीं ना कहीं अनाज ही अनाज के बारे में कभी नहीं सोचा। हाँ वो तो चाहिए, रोटी तो चाहिए ही चाहिए, वो तो जीवन का आधार है, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन तो मुख्य है सारा जीवन की, ये सारी भागदौड़ किस लिए, दो वक्त की रोटी मिल जाए बस। मजदूर सारे दिन भर क्यों मेहनत करता है, किस लिए, बस पेट, पापी पेट का सवाल है। भूख, भूख और चीज किसी चीज से नहीं मिटती, रोटी चाहिए उसको। मानव मूलतः फल मेवे खाने वाला प्राणी रहा है। जब धरा पर व्यक्ति आया तो क्या थे, फ्रूटेरियन थे, फलाहारी थे, और अभी क्या बन गए, अनाजहारी और रोगी। उसने परिस्थितिवश मजबूर होकर अपने आप को इस हालत में जीवित तथा सुरक्षित रखने के लिए मांस, अंडे, दूध, शहद, जमीकंद, हरी पत्तियां एवं अनाज खाने की आदत बनाई। कल्पना की जाती है कि सबसे पहले जंगल में आग लगाने के बाद जले भुने अनाज के दाने मानव न खाए तो भूख में थोड़े मीठे से लगे, बस यहीं से उसका परिचय अनाज आग में पकाकर खाने से हुआ। खैर हम इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मानव ने पहली सिगरेट कब और कैसे पी, हमें तो केवल ये देखना है कि हमारे स्वास्थ्य का अनाज से क्या नाता है, ये रोगदायक आहार है या आहारदायक, आरोग्यदायक। आग के आविष्कार के पहले अनाज खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, आग कहीं ना कहीं आविष्कृत हुई है। ये सतयुग, ये त्रेता, यहाँ हम आते ही ऊपर से शरीर इतना स्वच्छ था, इतना सुंदर था, कई इतिहासकारों ने इसकी लिखा है, जब व्यक्ति पहली बार धरातल पर आया क्या खाया, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कॉस्मिक रेस से ही वो चलता था, उसका शरीर इतना स्वच्छ था, इतना प्योर था, आंतों में कोई मल नहीं था, कोई विजातीय द्रव्य नहीं थे, शरीर सत्व प्रधान था, इतना सुंदर था कि केवल सूरज की किरणें, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक लाइट से ही जीवित थे। पहला आहार उसका रहा है बारिश का पानी, रेन वाटर। दूसरा उसका आहार, वो जब नीचे आया तो फ्रूट्स खाने लगा, फिर वो भी रस, पहला रसाहार, फिर धीरे धीरे फ्रूट्स, और वो भी यदि सतयुग में क्या खेती होती थी, बहुत बड़ा प्रश्न है। खेती के लिए क्या क्या उथापटक करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें, क्या देवता आके बैल, हल, मेहनत ये सब करेंगे ना? हाँ, अगर खेती होती भी थी तो वो केवल आनंद के लिए, प्लेजर के लिए, बस ऐसी एक व्यवस्था, एंजॉयमेंट। खाते भी थे देवता भूख के लिए नहीं, किस लिए? एंजॉयमेंट के लिए। 36 प्रकार का भोग, ये भोग वो भोग, देवता है, पिकनिक करते थे, आनंद करते थे, उनके जीवन का आधार ये नहीं था। भूख नाम, भूख और प्यास क्या होती है उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि शरीर स्वच्छ था। स्वच्छ शरीर को कभी भूख प्यास नहीं लगती है, वो तो अस्वच्छ होता है शरीर, तब भूख प्यास जागती है। और कोई विकार भी नहीं थे, शरीर भी सत्व प्रधान, प्रकृति भी सत्व प्रधान। तो इतिहासकारों का मानना है कि जब पहली बार आया, आयु बहुत लंबी थी, कितनी कितनी थी उस पर एक बहुत बड़ी किताब लिखी है, लाइफ इन फ्लोरिडा, होटिमा हिल्टन, इतनी बड़ी किताब है जिसमें पूरा वर्णन लिखा है इतिहास का, कि कैसे व्यक्ति 150 वर्ष जीता था, 250 वर्ष, बाइबल में लिखा है, ऐसे ऐसा वर्णन किया है कि नो की उम्र उस समय 600 वर्ष की थी, फिर उसका बेटा जो था उसकी उम्र 500 वर्ष की थी, ऐसे बहुत सारे लोगों के वर्णन है बाइबल में, एक एक व्यक्ति और उसका एक एक की उम्र कितने कितने साल। मनु शत्रुपा ने तप किए, श्री राम के माँ बाप के पूर्व जन्म, दशरथ और कौशल्या, उसने इतने साल 10,000 तप किया, ये सब कहाँ का वर्णन है, ये सब द्वापर में लिखा गया, मे भी उतना नहीं होगा, पर एक चीज तो निश्चित है कि आयु लंबी थी, निश्चित है, इतनी तो नहीं थी जितना हम देखते। अभी कुछ दिनों पहले एक पेशेंट आए, उसकी उम्र थी 29 ईयर्स, हार्ट अटैक, 29 की एज में हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी हुई, स्टेंट डला गया, कोई सोच भी नहीं सकता इतनी उम्र में हार्ट अटैक आ सकता है। तो रोग 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 रोग, इतने सारे रोग, छोटी छोटी उम्र में ऐसे 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 रोग, दोनों किडनी फेल, डायलिसिस चालू, एक छोटा बच्चा आता है हमारे पास डायलिसिस करने, अकेला आता है बेचारा, गरीब है, और पैसे नीचे से ऊपर, पहले गांव से एक बस बंद कर दूसरी जगह, फिर वहां से और रिक्शा से आबू रोड तक, फिर आबू रोड से यहाँ स्टेशन या बस स्टैंड तक, वहां से पैदल यहां तक आता है हॉस्पिटल तक। क्यों ये सारे रोगों से हम ग्रसित हो गए? कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है, ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। फिर हम बता रहे थे, सबसे पहले एयर, कॉस्मिक एयर, फिर पानी लिया, फिर रस लिए, फिर फ्रूट्स खाना चालू किया, फिर द्वापर आया, द्वापर से फिर उसने यहाँ से मनुष्य ने शिकार करना चालू किया, नॉनवेज चालू हो गया, फिर धीरे धीरे खेती करना चालू की, यहाँ पर खेती में बहुत कुछ किया उसने, और क्या क्या किया वो हम देखेंगे। उसके पहले आग, आग और अनाज, आग के आविष्कार से पहले अनाज खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि अनाज का सारा खेल आग के पकने पर निर्भर है। समय व्यतीत होने के साथ मानव आग में भोजन पकाने की कला को विकसित करता चला गया। दो चीजों ने संसार की बहुत हानि की है, एक पाक शास्त्र, दूसरा औषधि शास्त्र, फूड इंडस्ट्री एंड ड्रग इंडस्ट्री। पाक शास्त्र अर्थात भोजन बनाने की कला, उसमें इतनी वैरायटीज, जितनी वैरायटी भोजन की और तो किसी इसमें नहीं होगी, उसमें सुख मिला है, यहीं से द्वापर से सब चालू हो गया। ये इसलिए कहा ना, कब चालू हुआ, कहाँ चालू हुआ, किसी को कुछ पता नहीं, पर हुआ है जरूर। आगे, कुदरत ने कोई आहार कभी किसी वस्तु पर निर्भर नहीं रखा, जिस तरह संसार के सभी प्राणियों के लिए उसने पका पकाया आहार भोजन बनाया, उसी तरह हमारे लिए भी उसने फल मेवे पके पकाए दिए हैं। अनाज के उपयोग की लालसा ने मनुष्य को हमेशा के लिए पोषक तत्व नष्ट करने वाली प्राण घातक आग से नाता जोड़ दिया। बस यही से मानव ने नींव रख दी अपने दुर्भाग्य की और रोग की। बस तभी से यह रोग की कहानी शुरू हुई। मानव अपने मूल आहार से भटक गया। अनाज की अधिक आवश्यकता और दैनिक आवश्यकताओं ने उसे खेती करने पर मजबूर कर दिया। देवताएं खेती करते थे या नहीं, ये आप सर्च करो। सतयुग में खेती थी या फलों के बगीचे थे? वहां पे वहां बगीचे थे, खेती नहीं थी। बगीचे अलग चीज है। ऑर्किड्स और फ्रूट्स, नॉट कल्टीवेशन ऑफ लैंड। आगे खेती एक मानव सजा। उगते हुए सूरज के सामने दो बैलों को जोतकर हाथ में हल लिए नंगे बदन उषाकाल में मेहनत कर रहे किसान की प्रतिमा को देखकर हमें बड़े हम प्रसन्नता से झूम उठते हैं। ये दृश्य, किसान मेरे देश की धरती। परंतु हमें उसमें मानव का दुर्भाग्य और सजा नजर नहीं आती। यही से ही आफत आ गई बेचारे स्वतंत्र निर्दोष बैलों पर। देखा है खेतों में मारा जाता है उनको। ना सिर्फ बैलों पर बल्कि ऊंटों, गधों, घोड़ों, गायों पर, क्योंकि मानव अकेला भाड़ कब तक झोंकेगा। अपनी सजा से उसने इन भोले भाले निर्दोष प्राणियों को भी कैदी बना लिया। यहां से शुरुआत हो गई मानव के पशु अत्याचार की। ये सतयुग में शेर था, सब था, वो हिंसक थे क्या? नहीं थे। गाय मुरलियों में आता है ना, शेर और बकरी, ये हिंसक क्यों बने? क्यों हिंसक बन गए ये सारे प्राणी द्वापर से? क्योंकि राजा महाराजे कहां करने जाते थे? शिकार करने जाते थे। और क्या करते थे शिकार में? मारते थे उनको। इसलिए उनमें भी हिंसा के वाइब्रेशंस पहुंचे, वो भी हिंसक हो गए। नहीं तो वो हिंसक नहीं थे पहले। आखेट आखेट पर निकलते थे, मजा आता था। मनोरंजन था वो। निर्दोष पशुजात और विशेषकर बेचारे बैल उस घड़ी को बद्दुआ दे रहे होंगे जिस घड़ी मानव ने जले भुने अनाज के दाने रख दिए, चख लिए। इस निर्दोष पशु समाज की मानव ने खूब मिट्टी पलित की, खूब निचोड़ा। जानवरों को अपना आहार उपज का सहारा बनाकर मानव ने स्वार्थ और अत्याचार का दर्जा पशु जात से भी नीचा कर दिया। शुक्र है कि आधुनिक विज्ञान का, जिसने खेती की आधुनिक मशीनें ईजाद की, भोले पशु जात को राहत एवं स्वतंत्रता दी। जानवर हमारे सहचर प्राणी है, गुलाम नहीं। एक थियरी है जिसको कहते हैं ईपीडब्ल्यू। ईपीडब्ल्यू सुना है किसी ने? आइंस्टेनियन पेन वेव्स। जब भी किसी पशु को पीड़ा दी जाती है, मारा जाता है, गाय बैल कोई भी, हमारे स्वार्थ के लिए। वो देखा है वो गाड़ी जिसमें जाली वाली गाड़ी और अंदर मुर्गियां लेके जा रहे अभी उनको, बेचारी दर्द में है, दुख में है, पीड़ा है। ये जो जानवर है उनकी जो पेन, जो आह है, जो दुख है, वो पीड़ा प्रकृति में जाती है। जितना उनको सताया जाता है, मारा जाता है, पोल्ट्री में देखो सब जगह पर, वो जो दर्द के प्रकंपन है वो सृष्टि में जाते हैं और उनके वजह से जो प्राकृतिक आपदाएं होती है वो होती है उन वेव्स से। इसको कहते हैं आइंस्टेनियन ब्रेन वेव्स। इसका आप रिसर्च कर सकते हैं। ईपीडब्ल्यू से अचानक भूकंप हो गया कहीं, क्यों? जरूर ये जो जानवर है उनको मारा जाता है, पीड़ा दी जाती है। उसको अगर देखोगे आप तो कहोगे ये क्या है, किस किस तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं, मारा जाता है, क्या कुछ किया जाता है उनके साथ। अपना आहार पाने के लिए हमने इतने सारे जरिए, इतनी सारी निर्भरता, इतनी सारी शक्ति और कितना परिश्रम करना पड़ा, तो आहार पर तो आइए इस पर प्रकाश। अनाज को भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए निम्नलिखित परिश्रमों से गुजरना पड़ता है। 10 बातें हैं। सबसे पहला बीज रोपण। खेती में क्या डालो? बीज। फिर बैल, फिर बैल को लाओ, फिर हल और जुताई, हल चलाओ, जुताई, फिर सिंचाई की व्यवस्था चौथा, पांचवा कटाई, फिर धुनाई, फिर सफाई। सफाई विभाग क्या कर रहे हैं? माता है अनाज को साफ कर रही है। फिर पिसवाई और कुटाई, फिर उसको वैसे खा सकते हैं क्या? उसको पीसना पड़ता है आटे को, फिर पीसो, उसके बाद में पकाओ, बिना उसके तो कैसे खाएंगे? फिर मसाले के माध्यम से खाना। हाय रे मानव, क्यों ली तुमने बैठे बिठाए आफत मोल, जीवन मस्ती छोड़ को छोड़ के तुमने उठा लिया दुखों के ढोल। आपने देखा कितने ढोल बजाने पड़ते हैं, कितने गीत पड़ते हैं, तब जाकर मिलता है रोग का रक, पशुओं का दाना, घास का बीज, गैर मानव आहार अनाज। बगीच खेती का आदमी से कोई नाता ही नहीं, वह तो फलों के बागान का मालिक था। इन बगीचों की केवल उसे सुरक्षा करनी पड़ती थी, बीज बोकर बस फलों का मौसम अनुसार मस्तीपूर्वक इंतजार करना पड़ता था। बगीचे का सम्राट जुट गया, किसमें? हम बगीचे के सम्राट थे सतयुग में, कहां रुक जुट गए? खेती में मजदूर की तरह दुर्भाग्य का पसीना बहाता बहाने। खेती कुदरत का निर्देश नहीं, मानव दिमाग की खुजलाहट है। मधुर स्वादिष्ट सुगंधित ताजे प्राणदायी फल मेवों का भोग छोड़कर रूखे कड़े निर्गंध स्वादविहीन मामूली मिठास वाले अनाज के साथ आवश्यक आदमी जुड़ गया और गिर गया रोगों की खाइयों में। ये दाने किसका आहार है? पशु पक्षियों के, हमारे नहीं। हमारा आहार क्या है? फल। जितना वो आहार शरीर में जाएगा जिसके लिए हमारा शरीर बना है, वो रोग से मुक्त हो जाएगा। नहीं तो यहाँ दर्द, कमर दर्द, पेट में दर्द, अपच, गैस, एसिडिटी, उल्टी जैसा होता है, सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, सिर दर्द दुखते रहता है, बीपी आ गया, अभी शुगर भी आ गया, अभी ये बॉर्डर पे है, कोलेस्ट्रॉल डॉक्टर ने बोला है नमक कम करो, अभी करने की कोशिश कर रहे, कल से ही वो कौन सा भोजन चालू किया है। नहीं, पेशेंट कहते हैं हाँ हम तो हमेशा, मतलब हम तो वो वाला अभी खाना, कब से? अभी दो दिन से नमक कम वाला। पेशेंट को पूछते ना बीड़ी बीड़ी पीते हो? नहीं नहीं, बीड़ी तो छोड़ दी। कब से? कब से छोड़ी? अभी कल से ही, मतलब एडमिट होने से पहले से ही छूट गई, कल से ही छोड़ दी। और ऐसी बात करते हैं जैसे कि सदियों से छोड़ दी। ऐसा कोई नहीं बोलता, कहते छोड़ ही दी। अनाज अपना कर स्वास्थ्य का नाश तो मानव ने किया ही है, साथ ही साथ इससे भी गंभीर खतरा और असंतुलन उसने पर्यावरण के लिए पैदा कर दिया है। नदियों को हमने मोड़ दिया, उसका जो प्राकृतिक ये था, नदियों का जो प्राकृतिक बहाव था, जो रास्ता था, उसको हमने अपने स्वार्थ के लिए मोड़ा, दिशा मोड़ दी हमने नदियों की। डैम बनाए, क्या क्या किया उसके साथ? जंगल काट दिए हमने, पर्यावरण का नाश किया, किस लिए? अपनी खेती बना लगाने के लिए। वृक्षों को काटकर अधिक से अधिक जमीन को सपाट कर पर्यावरण का दुश्मन हम बन गए। फलों के वृक्ष की छाया व सुरक्षा का आनंद लूटने वाला सम्राट कड़ाके और सर्दी का शिकार हो गया। कच्चे अनाज की तरफ मानव का रत्ती भर भी आकर्षण नहीं है। ये गेहूं रखिए, खाओ आशीष भाई, खा के दिखाओ गेहूं। ये है चावल, खाओ उसको। ये है दालें, खा के दिखाओ। कोई आकर्षण है? मुंह में पानी आता है दालों को देखकर। वही पशु पक्षी पशु इत्यादि से खूब चाव से झूम झूम कर खाते हैं चिड़िया, क्योंकि इन प्राणियों का इस आहार पर जन्मसिद्ध अधिकार है। कच्चे अनाज के पाषण की व्यवस्था कुदरत ने इन प्राणियों के अंदर की है, मानव में नहीं। कच्चे अनाज खाते ही हमारे पेट में दर्द। प्राणियों को मजा आता है, आनंद डाले नियम अनुसार पशु पक्षियों का खाना है। अनाज पर उनका साम्राज्य और फल मेवों पर हमारा साम्राज्य। पराए साम्राज्य में आकर हम स्वास्थ्य के धनी दरिद्र और कंगाल हो गए। आइए लौट चले अपने साम्राज्य की तरफ। ताजे फले और मेवे को सूखे कच्चे अनाज के सामने रखकर तुलना करें और पूछे अपने आप से, क्यों पागल है हम इस अनाज के? दोनों के रूप गंध एवं स्वाद में जमीन आसमान का फर्क है। ईश्वर ने फल मेवों के खाने को सीधा तैयार किया है, करके परोस दिया है, बस हमें इन्हें खाना है। अनाज को खाने को पशु पक्षी तैयार है। हाँ, अगर हम खाना है तो फिर आग जरूरी है, पकाना जरूरी है। ये अनाज रखा हुआ है, अब इसको खाना है तो क्या जरूरी है? सबसे पहला फायर,
सबसे पहले क्या चाहिए?
फायर।
ठीक है, फिर पका दिया, चलो भाई पका भी लिया, ये चावल है उसको पकाया, शर्करा में परिवर्तित हो गया, शुगर में, थोड़ा खाने योग्य लगा, भूख कड़क है इसलिए खा तो लिया, परंतु ज़्यादा खाया नहीं जा सकता, थोड़ा नमक चाहिए फिर उसमें। क्या चाहिए फिर अभी? थोड़ा सॉल्ट, बिना सॉल्ट के कोई खिचड़ी बनाए, उसमें नमक ही नहीं है, चावल बना दिया नमक ही नहीं है, मज़ा आता है? दाल बना दी पर बिना नमक वाली, जैसे कोई कठोर सजा मिल रही है, वो जबरदस्ती डॉक्टर ने बोला इसलिए। थोड़ा नमक, घी या मीठा या थोड़ी मिर्ची मिल जाए ताकि थोड़े खाने में सहूलियत हो जाए। ठीक है, चलो भाई मसालों की व्यवस्था कर दी, अब तो मज़ा आ रहा है ना? नहीं, क्यों क्यों भाई? आ प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, अब पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी चाहिए। चलो भाई पानी भी पी लिया। ये नमक, मिर्च, मसाले, घी या गुड़ चीनी हमारे मुंह के पास फटक ही नहीं सकते थे, मुंह में घुसने का कोई बहाना ही नहीं था, अनाज ने अच्छा बहाना दे दिया इन हानिकारक चोरों को अंदर डालने का। अंदर जाने से पहले जीव ने तो बहुत रोका, मना किया, परंतु अनाज महाशय के साथ चुपके से ये सभी नीचे पेट में उतर गए। शरीर ने पहचान लिया इन चोरों को, खूब सारा स्त्राव कर सभी अंगों को बचाते हुए शीघ्र धक्का मारकर इन्हें बाहर फेंकने की तैयारी चल पड़ी। कुछ आतों, कुछ गुर्दे की तरफ धकेल दिया, स्त्राव के कारण शरीर में पानी की कमी हो गई, प्यास फालतू में बढ़ गई और हमने यह नियम बना लिया कि भोजन के बाद या साथ पानी पीना स्वाभाविक है। पानी पीते रहते दिन रात पानी पीते रहते, खाना खाया, कोई लोग खाने खाते खाते भी पीते रहते, कोई खाने के बाद भी पीते रहते, खाने के पहले भी पीते रहते, दिन भर पानी पीते रहते और फिर भी पथरी होती रहती है। कहते पेट ही नहीं साफ होता सुबह सुबह जब तक 2-3 गिलास पानी नहीं पी ले। किसी व्यक्ति ने जीवन भर पानी पर एक्सपेरिमेंट किया, लास्ट में उसका कंक्लूजन था, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इन द सिस्टम इज डेथ। एक बूंद भी पानी अगर एक्स्ट्रा पड़ गया शरीर में वो मृत्यु है। क्या पानी की इतनी जरूरत है जितना हम पी रहे? शायद नहीं, शायद, खुद खोज करके देखो। आइए जरा अनाज को फीका ही खाकर देखे, फीके चावल खाओ, फीका दलिया खाओ, फीका बाजरा खाए, फीकी रोटी खाए। क्यों भाई साहब, फल में उसे अधिक मजा आ रहा है कि नहीं? अरे भाई इतने बेस्वाद ढंग से मुंह लटकाकर मजदूरी से क्यों गले में उड़ेल रहे हो? एक आहार खाने के लिए मानव को इन सभी कितनी चीजों का आहार लेना पड़ा? आग पहला, दूसरा नमक, तीसरा मसाले, चौथा चीनी। एक तो अनाज को दो चीज़ों से, एक तो नमकीन बनाया जाता है या मीठा, मीठा बनाने के लिए तो चीनी चाहिए, शहद चाहिए, गुड़ चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? घी, तेल की गुलामी अपनानी पड़ी। फेंक दो इस दास्ता पूर्व आहार को, पराया आहार छोड़ो, अपना, जी हाँ, हमारा जो निर्धारित आहार है फल और मेवे, स्वाद पोषण का अनोखा आनंद देने वाला अमृत तुल्य आहार है। सोचना है हम क्या खा रहे हैं और क्यों बीमार है और कौन सी चीज़ हमको भारी कर रही है। एकदम कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए धीरे 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 कम करते जाना है उसको। जो 4 बार खा रहे हैं वो 3, जो 3 बार खा रहे हैं वो 2, जो 2 बार खा रहे हैं वो 1 बार, एक बार तक उसको ला लो, मतलब रात्रि 1 बार अनाज, बाकी सारे दिन भर दूसरी चीज़ें जो हमको हल्का रखे, ऊर्जावान रखे। जो 3 बार आहार अनाज ले रहे उनमें कहीं ना कहीं एक आलस रहता है, एक नशा सा रहता है, नींद आती है भोजन करते ही, ऐसा लगता है सो जाओ तुरंत, अमृत वेले उठने की इच्छा नहीं होती है, लेट उठते तो है नियम अनुसार, पर ऐसा मन कहता है थोड़ा और सो जाओ, उसका कहीं ना कहीं कारण इसका नशीलापन है। इसलिए उसको छोड़ते ही क्या होता है, शरीर मांग करता है, बेचैनी उठती है। अनाज, आम का मौसम आता है, आम 4 महीने खाते हैं, मौसम चला जाता है, कोई मिस नहीं करता हमको, अपने आप प्राकृतिक है। अनाज रोज खाता है, एक दिन कहो उसको आज अनाज नहीं खाना है, रात तक हालत खराब हो जाती है, ढूंढ के रोटी का सूखा टुकड़ा भी मिल जाए तो भी खा लेंगे, तो कहीं जाके अब थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा ठीक लगा भी खाते, इससे ही पता चलता है कितना उसमें एडिक्शन है। तो ये हमने कुछ प्रारंभिक बातें आज देखी, कल कुछ आगे की बातें देखेंगे। ओम शांति।